ఓం శ్రీ దుర్గాయై నమః. అథ శ్రీ దుర్గా సప్తశతీ ప్రథమోధ్యాయ వినియోగ. ఓం ప్రథమ చరిత్రస్య బ్రహ్మా ఋషి మహాకాళీ దేవత గాయత్రీ ఛందః నందా శక్తి రక్తదంతికా బీజం అగ్నిస్తత్వం ఋగ్వేద స్వరూపం శ్రీ మహాకాళీ ప్రీత్యర్థే ప్రథమ చరిత్ర జపే వినియోగ. అథ ధ్యానం. ఖడ్గం చక్రదేషు చాప పరిఘాన్ శూలం భషుండీ శిర శంఖం సందదతీం క్రై స్త్రీనయనాం సర్వాంగభూషావృతాం నీలాశం దుతిమాస్య పాదదశకాం సేవే మహాకాళికాం యామస్తౌత్స్వపితే హరౌ కమల్యౌ హంతుం మధుం కైటభం. ప్రథమ చరిత్ర కే బ్రహ్మా ఋషి మహాకాళీ దేవత గాయత్రీ ఛంద నందా శక్తి రక్తదంతికా బీజ అగ్నిస్తత్వ ఔర్ ఋగ్వేద స్వరూప హే. శ్రీ మహాకాళీ దేవత కీ ప్రసన్నతా కే లియే ప్రథమ చరిత్ర కే జప్ మే వినియోగ్ కియా జాతా హే. భగవాన్ విష్ణు కే సో జానే పర్ మధు ఔర్ కైఠభ్ కో మారనే కే లియే కమల జన్మా బ్రహ్మాజీ నే జిస్కా స్తవన్ కియా థా ఉన్ మహాకాళీ దేవి కా మే సేవన్ కర్తా హూ. వే అప్నే 10 హాథో మే ఖడ్గ చక్ర గదా బాణ ధనుష్ పరిగ్ శూల్ భషుండీ మస్తక్ ఔర్ శంఖ ధారణ కర్తీ హే. ఉన్కే 3 నేత్ర హే. వే సమస్త అంగో మే దివ్య ఆభూషణో సే విభూషిత హే. ఉన్కే శరీర్ కీ కాంతి నీలమణి కే సమాన హే తథా వే 10 ముఖ ఔర్ 10 పైరో సే యుక్త హే. ఓం నమశ్చండికాయై మార్కండే ఉవాచ సావర్ణి సూర్యతనయో యో మనో కథ్యతే అష్టమ నిశామే తదుత్పత్తిం విస్తరాద్ గదతోమం మహామాయానుభావేన్ యథామనంత్రాధిపః సవభూ మహాభాగః సావర్ణిస్తన్యోరభే. స్వారోచిషే అంతరే పూర్వం చైత్రవంశముద్భవ సురథో నామ రాజా భూత్ సమస్తే క్షితిమండలే తస్య పాల్యతః సమ్యక్ ప్రజా పుత్రాని వౌరసాన్ బభూవు శత్రువో భూపా కోలాభిధ్వంసనస్తదా. మార్కండే జీ బోలే సూర్య కే పుత్ర సావర్ణి జో 8వే మను కహే జాతే హే ఉన్కీ ఉత్పత్తి కీ కథా విస్తార పూర్వక కహతా హూ సునో. సూర్య కుమార్ మహాభాగ్ సావర్ణి భగవతి మహామాయా కే అనుగ్రహ సే జిస్ ప్రకార్ మన్మంత్ర కే స్వామీ హువే వహీ ప్రసంగ సునాతా హూ. పూర్వ కాల్ కీ బాత్ హే. స్వారోచిష్ మన్వంత్ర మే సురథ నామ కే ఏక్ రాజా థే జో చైత్ర వంశ మే ఉత్పన్న హువే థే ఉన్కా సమస్త భూమండల్ పర్ అధికార థా. वे प्रजा का पालन अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक करते थे. तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रि उनके शत्रु हो गए. तस्य तैर भवत युद्धमति प्रबल दंडिना न्यूनैरपि सतैर युद्धे कोला विध्वंस भिर्जिता तथा स्वपरमाया तो निज देशाधिपो अभवत ఆక్రాంతా సమహాభాగస్తైస్తదా ప్రబలారిభి అమాత్యైర్బలిభిర్దుష్టైర్ దుర్బలస్య దురాత్మభి కేశోబలం చాప్రితం తత్రాపి స్వపురే తతః తతో మృగయా వ్యాజేన్ హృత్స్వామ్యా సభూపతిః ఏకాకీ హై మారుహ్య జగాం గహనం వనం సా తత్రాశ్రమ మద్రాక్షీర్ ద్విజవరస్య మేధసః ప్రశాంతశ్వాపదాకీర్ణం మునిశిష్యోపశోభితం తస్యౌ కశ్చిత్ సకాలం చ మునినా తేన్ సత్కృతః ఇతశ్చేతస్ విచరన్ తస్మిన్ మునివరాశ్రమే. రాజా సురథ్ కీ దండ నీతి బడీ ప్రబల్ థీ. ఉన్కా శత్రువు కే సాథ్ సంగ్రామ్ హువా. యద్యపి కోలా విధ్వంసీ సంఖ్యా మే కమ్ థే తో భీ రాజా సురథ్ యుద్ధ మే ఉన్సే ప్రాస్త్ హో గయ్. తబ్ వే యుద్ధ భూమి సే అప్నే నగర్ కో లౌట్ ఆయే ఔర్ కేవల్ అప్నే దేశ్ కే రాజా హోకర్ రహనే లగే. किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया. राजा का बल क्षीण हो चला था इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को वहां से हथिया ली. सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए. वहां उन्होंने अपने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य थे और वो सब वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक वहीं रहे। सो अचिंत्य तदा तत्र ममात्वा कृष्ट चेतना मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मयाहीनं पुरोम हि तत् मद्भृत्यैः तैर् सद्भृत्यैः धर्मतः पाल्यते नव न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरी वशं यातः कान् भोगानुप्लपस्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसाद धन भोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं त्यद्य कुर्वन्त्यन्यं हि मिताम् असम्यक् व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम् संचितः स्वति दुःखेन क्षयं केशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राशमाभ्यासे वैश्मेकं ददर्श सः श्रापिष्टस्तेन कस्त्वं वो हेतुश्चागमनेऽत्र कः सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकरण वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम् प्रत्युवासतम् वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपम्। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते भी हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने के लिए सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जावेगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहां तुम्हारे आने का कारण क्या है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सुरथ का यह प्रेम पूर्वक पूछा हुआ प्रश्न सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, वैश्योवाच समाधिर्नाम वैश्यो अहम उत्पन्नो धनिनाम कुले पुत्र दारैर निरस्तश्च धनलोभाद साधु भी विहीनश्च धनर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम् वनम् अभ्यागतो दुखी निरस्तश्चाप्त बंधु भी सो अहम् न वेद्मि पुत्राणाम कुशला कुशला तमिकाम् प्रवृतिम स्वजनानाम च दाराणाम चात्र संस्थिता किम नु तेषाम गृहे क्षेमम अक्षेमम किम नु साम्प्रतम कथम ते किम नु सद्वृता दुर्वृता किम नु मे सुता। वैश्य बोला, हे राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया। यहां रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजोवाच यैर निरस्तो भवान लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवता स्नेहम् अनुबधनाति मानसम्। राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्योवाच एम मे तद यथा प्राह भवान अस्मद्गतम वचः किं करोमि न बधनाति मम निष्ठुरताम मनः यैः संत्यज्य पित्री स्नेहम धन लुब्धै निराकृतः पति स्वजन हार्दम चहार्दी तेषवेव मे मनः किम्मे तन्नाभि जानामि जानन्नपि महामते यत् प्रेम प्रबलम चित्तम विगुणेष्वपि बंधुषु तेषां कृते मे निश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन् मनस्तेष्व प्रीतिषु निष्ठुरम्। वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे दी है और मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है, हे महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है वह क्या है, इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूं और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं क्या करूं। मार्कण्डेय उवाच, ततस्तौ सहितो विप्र तम मुनि समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्यो असु स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तुतौ यथा न्यायम् यथार्हम् तेन संविदम् उविष्टौ कथा काचित् चक्रतुर्वैरश्व पार्थिवौ। मार्कण्डेय जी बोले, हे ब्राह्मण, तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नाम का वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनयपूर्ण वर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजोवाच, भगवनस्त्वामहम् इष्टुमिच्छामेकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसा स्वचित्तायततां विना ममत्वं गतराजस्य राजंगेष्वखिलेष्वपि जानतो अपि यथाज्ञस्य किमतेन मुनिसत्तमम् अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्जितः स्वजनेन च संत्यक्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष्तथाहं च द्वावप्यत्यन्त दुःखितौ दृष्टिदोषे अपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ तत् किमेतन् महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममासिच्च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता। राजा ने कहा, हे भगवन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि यह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख हो रहा है, ये क्या है। इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसको छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों समझदार हैं तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है। विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि रुवाच, ज्ञानमस्ति समस्तस्य जंत्रोर विषय गोचरे विषयास्त महाभाग याति चैवम पृथक पृथक देवांधा प्राणिनः केचित् रात्रा बंधा तथा परे केचित् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनः स्थूल दृष्ट्या ज्ञानिनो मनुजः सत्यम् किंतु तेना हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशु पक्षी मृगादयः ज्ञानम् च तन्मनुष्याणाम् यत्तेषाम् मृग पक्षिणाम् मनुष्याणाम् यत्तेषाम् तुल्य मन्यत् तथोभयो ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतंगाच्छाव चंचुषु कणमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुदा मानुषा मनुज व्याघ्र साभिलाषा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वितान् किन्न पश्यति तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातितः महामाया प्रभावेण संसार स्थिति कारिणा तन्नात्र विस्मयाकार्यो योग निद्रा जगत्पते महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बालाद कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वम् जगदेच्चराचरम् सैषा प्रसन्नता वरदा नृणाम भवति मुक्तये स विद्या परमा मुक्तिर हेतु भूता सनातनी संसार बंध हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। ऋषि बोले, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते, पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग पक्षी आदि को की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे होते हैं। हे नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त हो मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूप जो भगवती माया हैं, उन्हीं ने यह सब जगत मोहित कर रखा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या संसार बंधन और मोह की हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। राजोवाच, भगवन काहिसा देवी महामायेति याम भवान ब्रवीति कथम उत्पन्ना सा कर्मायश्च किम द्विज यत्त्वभावाच सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदांवर। राजा ने पूछा, हे भगवन, जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन हैं? हे ब्रह्मन, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि रोवाच, नित्य सा जगन मूर्ति तया सर्मिदं ततम तथापि तत्समुत्पत्तिर बहुधा श्रूयताम मम देवानाम कार्य सिद्ध्यर्थम आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्यापविधीयते। योग निद्राम यदा विष्णु जगत्ये कारण विकृते आस्ति शेषमभिजत कल्पान्ते भगवान प्रभु तदा द्वावसरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटवौ विष्णु कर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभि कमले विष्णुः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा त्वावसरौ चौग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम् तुष्टावियोग निद्राणां तामेकाग्रहिदः स्थितः विभोदनार्थाय हरेर्हरिनेत्र कृतालयाम् विंध्येश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहार कारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णो रतुलां तेजसः प्रभु। ऋषि बोले, हे राजन, वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्हीं ने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक आरण में निमग्न हो रहा होता है और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों की मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तत्पर हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्र चित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया। जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेजस स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं, उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वष्टकारा सुरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रा आत्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषिता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयै तत् धार्यते विश्वं त्वयै तत् सृज्यते जगत् त्वयै तत् पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थिति रूपा च पालने तथा स्मृति रूपांते जगतो अस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहाच भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वं ईश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शांति क्षांतिरेव च खड़गिनी शूलनी घोरा गदनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी वाण बशुंडी परिगायुधा सौम्या सौम्यत्राशेष सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी परा प्राणां परमां त्वमेव परमेश्वरी यत्किंचित् क्वचिदस्तु सत्सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिस्ता त्वं किं सतूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीता कस्त्वां स्तोत्महेश्वरः विष्णु श्रीग्रहणम् अहमीशानेव च कारितास्ते यतो अतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्दैवी संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षावसरौ मधुकैटवौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियातामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो, स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो, नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है उसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या तुम ही सावित्री तथा परम जननी हो। हे देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करने वाली हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो, भयंकर कालरात्रि महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री तुम ही ईश्वरी तुम ही हरिम और तुम ही बोध स्वरूपा हो। लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति और क्षमा तुम ही हो। तुम खड़गधारिणी शूलधारिणी घोर रूपा तथा गदा चक्र शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण भुशुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्व स्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किस में है। हे देवी तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि उवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णुः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहुः हृद्येभ्यस्तथो रसः निर्गम्य दर्शने तस्यौ ब्रह्मणो अव्यक्त जन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथ तया मुक्तो जनार्दनः एकारण वे अहिशैन्ना तत्तासा ददृशे चतौ मधुकैटभौ दुरात्मानाव अतिवीर प्राक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणाबंतुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्याम युधे भगवान हरिः पंचवर्ष सहस्राणि बाहु प्रहरणो विभु ताव्यप्यति ब्लोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तो ब्रोस्मत्तौ त्रियतामिति केशवम्। ऋषि कहते हैं हे राजन जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की तब वे भगवान के नेत्र मुख नासिका बाहु हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गईं। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार्णव के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्रीहरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हुए तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवानोवाच भवेता मध्य मे तुष्टौ मम बध्यावभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि वृत्तम मम। श्री भगवान बोले यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है यहां दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि उवाच वंचिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयम् जगत विलोकिताभ्याम गदितो भगवान कमलेक्षणः आवाम जहिना यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता। ऋषि कहते हैं इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा तब कमल नयन भगवान से कहा जहां पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो जहां सूखा स्थान हो वहीं हमारा वध करो। ऋषि उवाच तथैत्युक्त्वा भगवता शंख चक्र गदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्नेन जघनेश ऋषितयोः एमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभामस्या देवास्तु भूयाश्रणु बदामिते ऐं ओम। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंत्रे देवी महात्म्ये मधुकैट वधो नाम प्रथमो अध्यायः। ऋषि कहते हैं तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थीं। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ सुनो। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मन्वंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय समाप्त हुआ। ॐ श्री दुर्गायै नमः। अथ द्वितीयाध्याय विनियोगः। ॐ मध्यम चरित्रस्य विष्णु ऋषिर्महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक्षन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजम् वायुस्तत्त्वम् यजुर्वेदः स्वरूपम् श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थम् मध्यम चरित्र जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। ॐ अक्षिक्षक्पर्शुम् गदेषु कुशलम् पद्मम् धनुषुकुण्डिकाम् दण्डम् शक्तिमसिम् च चरम् जलजम् घण्टाम् सुराभाजनम् शूलम् पाशुदर्शने च दधतीम् हस्तैः प्रसन्नाननाम् सेवे सैर्भमर्दिनीम् हि महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूं, जो अपने हाथों में अक्षमाला फरसा गदा बाण वज्र पद्म धनुष कुंडिका दंड शक्ति खड़ग ढाल शंख घंटा मधुपात्र शूल पाश और चक्र धारण करती हैं। ओम हरिम ऋषि रुवाच देवासुरमभूद युद्धम पूर्वमब्दशतम् पुरा महिषे असुराणामधिपे देवानाम् च पुरंदरे तत्रासुरैर् महावीर्यैर् देवसैन्यम् पराजितम् जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो अभून् महिषासुरः। ऋषि कहते हैं पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तथा प्राजिता देवः पद्मयोनिम् प्रजापतिम् पुरुषकृत्य गतास्तत्र यत्रेश गरुड़ध्वजौ यथावृतम् तयोस्तद्वन् महिषासुर चेष्टितम् त्रिदशः कथ्यामासुर देवाभी भव विस्तरम्। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी प्राजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। सुरेन्द्र आगन्य अनिलेन्दूनाम यमस्य वरुणस्य च ऐलेषाम् चाधिकाराम् सा स्वमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृतः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मृत्या महिषेण दुरात्मना एतद्वदः कथितम् सर्वममरारि विचेष्टितम् शरणम् वः प्रपन्नास्मो बधस्तस्य विचिन्तयताम्। वे देवता बोले हे भगवन् महिषासुर सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से सुनाई। अब हम आपकी ही शरण आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इत्थम निशम्य देवानाम वचांसि मधुसूदनः चकार कोपम शंभुश्च भ्रकुटी कुटिलाननौ ततो अति कोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणा शंकरस्य च अयनेषाम चैव देवानाम शक्रादीनाम शरीरतः निर्गतम सुमहत्तेजस्तच्चैकम समगच्छत अतीव तेजसः कूटम् ज्वलन्तमिव पर्वतम् ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वाला व्याप्त दिगंतरम् इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गईं और मुख टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ता था। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। अतुलम तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थम तद्भून्नारी व्याप्त लोकत्रयम् तुषा यदभूच्छाम्बभम् तेजस तेना जायत तन्मुखम् याम्येन चाभवन केशा बाहवो विष्णु तेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मम् मध्यम चैन्द्रेण चाबभत वारुणेन च जंघोरु नितंबस्तेजसा भुवः। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने तेज से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग यानी कटी प्रदेश का प्रादुर्भव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मणस्य तेजसा पादौ तदुंगुल्यो अर्क तेजसा वसूनाम चक्रा अंगुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्रजापत्येन तेजसा नयनत्री तयम् जग्गे तथा पावक तेजसा भ्रुवौ च संध्योस्तेजः श्रवणावनलस्य च अयनेषां चैव देवानां संभवस्तेजसां शिवा। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तथा समस्त देवानां तेजो राशि समुद्भवाम ताम विलोक मुदम प्रापुरमरा महेशार्दिता शूलम शूलाद्विष निष्कृष्य ददौ तस्य पिनाद्रिक चक्रम च दत्तवान कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शंखम च वरुणः शक्तिम ददौ तस्य हुताशनः मारुतो दत्तवान चापम बाण पूर्णे तथेशुधि। तदनंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से उत्पन्न करके भगवती को एक चक्र अर्पण किया। वरुण ने शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए दो तरकस प्रदान किए। वज्रमिंद्रः समुत्पाद्य कुलिशार्मराधिपः ददौ तस्य सहस्राक्षो घंटमयीरावताद् गजात् कालदंडात् द्युमोदंडम् पाशम् चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालाम् ददौ ब्रह्मा कमंडलुम् समस्त रोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गम् तस्याश्चरम् च निर्मलम्। सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने सप्तिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने करमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार प्रदान की। क्षीरोदश्चावलम हारमजरे च तथाम्बरे चूड़ा मणिम तथा दिव्यम कुंडले कटकानि च అర్ధచంద్రం తథా శుభ్రం కేయూరాన్ సర్వాహుషు నూపరౌ విమలౌ తద్వద్ గ్రైవ్యక్మనుత్తమం. అంగులీయకరత్నాని సమస్తాసు అంగులీషు చ విశ్వకర్మా దదౌ తస్యై పరశుం చాతి నిర్మలం. क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले दो दिव्य वस्त्र भेंट किए. साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, दो कुंडल कड़े उज्ज्वल अर्धचंद्र तथा बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भेंट की. विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया. अस्त्राण्यनेक रूपाणि तथा भेद्यम च दंशनम अमलान पंकजाम मालाम शिरसयूरसी चापराम अदद्ध जलधिस्तस्यै पंकजम चातिशोभितम हिमवान वाहनम सिंहम रत्नानि विविधानि च. ददाव शून्यम सूर्या पान पात्रम धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणि विभूषितम नागहारम ददौ तस्यै धत्ते यः पृथ्वी मिमाम अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा. साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए. इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी ना कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं दी. जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया. हिमालय ने सवारी के लिए सिंह दिया तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए. धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा मधु पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया. इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया. सम्मानिता ननाद्वैच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नम् आपूरितं नभः. अमायताति महता प्रति शब्दो महानुभूत चक्षुभु सकला लोकः समुद्राश्च कंपिरे चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधरः जयति देवाश्च मुदा तामुच्चुः सिंहवाहिनी. तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की. उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा. देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका. आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा. उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे. पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे. उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, तुष्टुवुर्मन्नश्चैनाम् भक्ति नम्रतात्मूर्तयः दृष्ट्वा समस्तम् संक्षुब्धम् त्रैलोक्यमरारयः सन्नदाखिल सैन्यास्ते सुमुत्तु स्थुरुदायुधः अहक्मेद्दिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरा अभ्यधावत तम शब्दम अशेषैर सुरैर्वितः साददर्श ततो देवीं व्याप्तलोक त्रयीं तुषा. देवता बोले, हे देवी, तुम्हारी जय हो. साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया. संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए. उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह, ये क्या हो रहा है? फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी. पादाक्रांत्या नतभुवम किरीटोल्लिखतांबराम शोभिता शेष पातालाम धनुर्जा निस्वनेनताम दिशो भुज सहस्रेण समन्ता व्याप्य संस्ताम तथा प्रवृत्ते युद्धम तया देव्या सुरद्विषाम शस्त्रास्त्रैर बहुधा मुक्तैरा दीपित दिगंतरम महिषासुर सेना निश्च चक्षुराख्यो महासुरः. उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी. माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए हुए थी. देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थीं। तदनंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। युयुधे चामृश्चान्यैश चतुरंग बलान्विता रथानाम युतैः खड्विरुद्राख्यो महासुरः अयुध्यता युतानाम च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैर्शिलोमा महासुरः अयुतानाम शतैः खड्भिर् वाष्कलो युयुधेरणे गजबाजि सहस्रौ घेरन् नैकैः परिवारितः। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1,00,000 रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोएं तलवार के समान तीखे थे। वह अभिलोमा नाम का महादैत्य 5,00,000 रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60,00,000 रथियों से घिरा हुआ वाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1,00,000,000 रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। वृतोरथानाम कोट्याच युद्धे तस्मिन् युद्धयत् विडालाख्यो अयुतानाम च पञ्चाशद् भिरथायुतैः युयुधे संयुगे तत्र रथानाम परिवारितः अन्ये च तत्रायुत्सो रथनाग हयैर्वृतः युयुधु संयुगे देव्या सह तत्र महासुरः कोटि कोटि सहस्रैस्तु रथानाम दंतिनाम तथा। विडाल नामक दैत्य 5,000,000,000 रथियों से घिर कर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्र रथ हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। हयानाम च वृतो युद्धे तत्रा भवून महिषासुरः तोम्रैर्भिन्दी पालैश्च शक्तिभिर्मूसलैस्तथा युयुधु संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचित् चिक्षुपुः शक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्ग प्रहारैस्तु ते ताम हन्तुम् प्रत्क्रमु सापि देवी ततस्तानि शस्त्राणस्त्राणि चंडिका। वे दैत्य देवी के साथ तोमर भिंदीपाल शक्ति मूसल खड्ग परशु और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रयास किया। लील्य प्रचिच्छेद निज शस्त्रास्त्र वर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरशिर्भि मुमोच्चासुर देहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी स्वपि क्रुद्धो धुत्सटो देव्या वाहन केशरी चचारासुर सैन्येषु वनेष्विव हुताशनः निश्वासान मुमुच्चेयांश्च युद्धमाना रण्यम्बिकः। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रहीं। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध से भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा। ताएव सद्या संभूता गणहा शत सहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर् भिन्दीपालास पट्टिशैः नाशयन्तो असुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहितः अवादयन्त पट्टान् गणहा शंखास्तथा परे मृदंगाश्च तैवान्ने तस्मिन् युद्ध महोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्ति वृष्टिभिः। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु भिंदीपाल खड्ग तथा पट्टिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस समय संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़गादि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। खड़गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान पात्यामास चैवान्यान घंटास्वन विमोहितान असुरान भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान कर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैः तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचिद् रुधिरं मुसलेन भृशं हता केचिन् निपतिता भूमौ भिन्नः शूलेन वक्षसि निरन्तराक्षरौ घेन कृता केचिद् रणाज्रे। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया, बहुतेरे दैत्यों को पाश से बांधकर धरती पर घसीटा, कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए, कितने ही दैत्य गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए, कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत हो रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। शयनानुकारिण प्राणान मुमुच्चु स्त्री दशार्दन केशांचिदवाहवश्छिन्नाश्छिन्न ग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषा मन्ये मध्ये विदारितः विच्छिन्न जंघास्त्वपरे पेतुरव्यां महासुरः एक वाह वक्षि चरणः केचिद् देव्या द्विधा कृतः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतितः पुनरुत्थितः कबन्धा युयुधुर्देव्या गृहीत् परमायुधा नन्नितुश्चा परे तत्र युद्धे तुरिल्याश्रिता। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गईं, कितनों की गर्दनें कट गईं, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे, कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए, कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े, कितनों को ही देवी ने एक बांह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला, कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते थे, दूसरे कबंध युग के बाजों की लय पर नाचते थे। कबंधाश्चिन्न शीर्षा खड़ग शक्तिवृष्टि पाण्या तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुरा पातितै रथ नागाश्वैर्सुरैश्च वसुंधरा अगम्या सा भवत् तत्र यत्राभूत स्महारणः शोणितौधा महानद्या सद्यस्तत्र प्रसुश्रुभु मध्ये चासुर सैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग शक्ति और अरिष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां यह घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ हाथी घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। क्षणेन तन महासैन्यम असुराणाम तथाम्बिका निन्येक्षेम तथा वहनिश त्रिणदारु महाचयम साच सिंहो महानादम उत्सिजिन्धुत्केशरः शरीरेभ्यो मरारीणाम असूनिव विचन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतम युद्धम महासुरैः यथैषां तुतुषुर्देवः पुष्वृष्टि मुचो दिवी ओम। इति श्री मार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुर सैन्यवधो नाम द्वितीयो अध्याय। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण चुने लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवता गण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नाम का यह दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।